السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने ये दिन रमज़ान के हमें नसीब फरमाए। इनको अपने लिए गनीमत समझिए, इसलिए कि ये दिन पता नहीं दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ सके या नहीं। रमज़ान मिलना बड़ी खुशबख्ती है। इसी वजह से सहाबा कराम किसी की नेकियों को अगर गिना करते थे तो वो इस तरह से कि किसको कितने रमज़ान मिले। तो लिहाजा ये दिन हैं गौर व फिक्र करने के, खुद को फारिग कर लेने के, अपनी रातों को आबाद करने के और दूसरे कामों से थोड़ी देर के लिए फुर्सत ले लेने के। सारा साल हम बेरूह फीकी इबादत करते हैं, ये दिन है खुशू के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करने की। ये रब को मनाने के दिन है, उसके आगे आंसू बहाने के दिन है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के दिन है। जब इंसान ये सोच लेता है कि उसने जन्नत में ही जाना है और आगे मामला बड़ा आसान है, तो उसको निजात की ज़्यादा फिक्र नहीं रहती। फिर आंसू भी कम ही बहते हैं, दिल मुश्किल से ही रोता है फिर, और फिक्र भी इतनी नहीं होती। हालांकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो गुनाहों से पाक हो, या जिसको जन्नत की जमानत मिल चुकी हो, या जिसके लिए आसमान से कोई परवाना आ चुका हो कि हम बख्शे बख्शाए हो गए, जहन्नुम से आज़ाद हो गए। फिर कैसे हम में से कोई आराम से बैठ सकता है, और वो भी इन दिनों में जिनमें रहमतों के दरवाज़े खुले हुए और चांस भी है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाह बख्शवा सकें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप दुनिया के जाने पर रो रहे हैं? फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, तुम्हारी ये दुनिया मुझे नहीं रुलाती। मैं तो गुनाहों के बोझ से, नेकी की कमी से और मंजिल की दूरी से रोता हूँ। क्या फिक्र थी उनको कि गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और नेकियाँ कम हैं और मंजिल यानी जन्नत बड़ी ही दूर है। फरमाते, मैं इसलिए रोता हूँ कि कहीं क़यामत के दिन पुल सिरात से ना गिर जाऊँ, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत से रह जाऊं। काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। कितनी फिक्र थी उनको कि इतनी हदीस की खिदमत करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाके भी, और फिर भी उनको ये फिक्र लगी हुई है कि मेरी नेकियां कम हैं और गुनाह ज्यादा हैं और मंजिल बड़ी ही दूर है। तो ये फिक्र हमें लगानी है, ऐसी सोच हमें अपने अंदर लेकर आनी है कि कहीं पुल सिरात से मैं पार ना हो सकी तो क्या होगा, कहीं मेरी नेकियां उस दिन घट गई तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे गुनाहों की बख्शिश ना हो सकी तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरा रब उस दिन मुझसे नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे गुनाहों ने मेरी नेकियां चाट ली हों तो क्या होगा, कहीं मेरे लिए अगर ये ऐलान हो गया कि मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा, कहीं अगर मेरे रब ने मुझे अपनी रहमत के साए में ना उस दिन लिया तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरा नामा या अमाल मेरे बाएं हाथ में आ गया तो मैं क्या करूंगी। कभी ये सोच भी दिल में लानी चाहिए। और अगर रात के वक्त में तन्हाई मुयस्सर आ जाए और उस तन्हाई में ये सोच लें, जिस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो, फोन भी दूर रख दें, उस वक्त ख्यालों में खुद को हशर के मैदान में खड़ा कर लें कि अल्लाह ताला की अदालत लगी हो और मैं खड़ी हूं, और फिर सोचते चले जाएं कि वहां क्या हालात होंगे, खुद को वहां खड़ा हुआ इमेजिन करें, फिर देखें कैसे आंखों से आंसुओं की झड़ी लगती है, फिर देखें कैसे गम से दिल फटता है, फिर वो जो तौबा दिल से निकलती है वो रूखी सूखी नहीं होती। वो दिन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, व खशातिल अस्वातुल रहमान, रहमान के आगे आवाजें दब जाएंगी, फला तस्माउ इल्ला हमसा, सिर्फ हम्स होगी, एक सांस की आवाज होगी, इसके अलावा कोई आवाज नहीं, तब मेरा क्या हाल होगा। तो तब वो जो तौबा है वो होगी जो बेकरार होके दिल से निकलेगी, तब वो बेचैनी आएगी जिससे दुआ में भी शिद्दत होगी, फिर अस्तग़फिरुल्लाह 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 इस तरह की तस्बीह नहीं होगी, फिर उस वक्त जब दिल से पुकार निकलेगी तो वो है वो पुकार जो अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचती है, फिर वो जो दुआ होगी इस बेचैन दिल की, ये है दुआ जो कबूलियत की मंजिलें पाती है, फिर दिल में ये जज्बात होंगे कि सब कुछ पीछे छोड़ के अब खालिस हो जाना है उस रब की खातिर, फिर जिंदगी को बदलने के इरादे होंगे, फिर बनेगी वो सोच कि बस अब मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारनी है, ऐसी रातें बड़ी कीमती होती हैं, और ऐसी एक तौबा भी सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा सकती है, और इसकी हमें कोशिश करनी है। आजकल जितना भी आप वक्त तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करने में गुजार सकते हैं वो गुजारें, क्योंकि हम यूजुअली सारा साल तो हजूम में और मजलिसों में और गपशप में और दोस्तों के दरमियान और सबके दरमियान रहते हैं, ये महीना एक आता है कि खुद को थोड़ा सा सिक्लूड करें, थोड़ा सा गौर और फिक्र, और यही बातें हैं जो गौर करने की। ठीक है, सारा साल नहीं वक्त मिला, तो गनीमत है ये वक्त जो अब मिल गया, सब महफिलों को कुछ अरसे के लिए खैरबाद कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह इफ्तार पार्टी पे पहुंचे हों, ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक जगह दावत पे पहुंचे हों, हर मीटिंग हर मजलिस हमने अटेंड करनी हो, तो हमारे असलाफ अपनी तन्हाइयों को बहुत महबूब रखते थे कि तन्हाई हो और अल्लाह ताला से बातचीत हो, तो उसकी लज्जत को इन दिनों में महसूस करें। आज हम जो अल्लाह ताला का इस्म आज़म, जिसको इमाम इब्नुल क़य्यिम ने इस्म आज़म करार दिया है, वो देखते हैं, ये वो नाम है अल्लाह सुबहाना व ताला का जिसके बारे में ये आता है कि ये वो नाम है जो अल्लाह ताला की बाकी जो सिफाती नाम है उनको अपने अंदर समोए हुए है, और ये है अल हय्युल कय्यूम, और उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह अल हय और अल कय्यूम ये तीन ही नाम है जिनके बारे में सबसे ज्यादा राय है कि ये ही इस्मे आजम है, और ये भी कि आप जानते हैं इस्मे आजम के जरिए जो दुआ की जाए, इस्मे आजम क्या होता है, जो अल्लाह ताला का ग्रेटेस्ट नेम है, अजीम नाम, उसके जरिए जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती। तो बाज शवाहिद से भी ऐसा मिलता है, बाज अहादीस से, कि यही अल हय्युल कय्यूम ही अल्लाह ताला का इस्मे आजम है। आयतल कुर्सी में भी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया कि वो अल हय है और अल कय्यूम है। सूरह आले इमरान के भी शुरू में ही आया, अल बकरा में मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह सूरह ताहा में आयत 111 में भी यही नाम आया, वानतिल वुजूहु लिल हय्युल कय्यूम, कि उस दिन चेहरे झुक जाएंगे हय और कय्यूम के आगे। तो ये हैं तो दो नाम जो अलग-अलग हैं तो उनका अपना माना है, और जब दोनों इकट्ठे मिलके आए तो फिर भी एक माना देते हैं जो तीसरा माना होगा। तो याद रखिए, कुराने करीम में जब भी अल्लाह ताला के दो नाम इकट्ठे आए तो उनके अपने अपने माने भी होंगे, और मिल के दोनों के भी एक माना, एडिशनल माना बनेगा। तो आयतल कुर्सी जैसे कुराने करीम की अजीम तरीन आयत है, इसका भी स्टार्ट अल हय्युल कय्यूम है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें भी अपना तारुफ इसी से करवाया कि वो अल हय है। हय सबसे पहले इसको देखें, हय हयात से है, हया, और वह हयात लाइफ। और जैसे कि अल्लाह ताला के हर नाम में परफेक्शन है, तो उसकी हयात में भी परफेक्शन है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नाम उस तरह से जामिद नाम नहीं है जैसे कि हमारे नाम होते हैं, यानी किसी का नाम अगर मसलन साजिदा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सजदा करने वाली हो, बस उसका नाम साजिदा रख दिया। माँ बाप इसलिए रखते हैं ताकि हो सकता है उसके अंदर ये क्वालिटीज आ जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हर नाम का एक मीनिंग है, और उसमें एक क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, सिफत है जो अल्लाह ताला में मौजूद है, और वो सिफत परफेक्शन की है। अलहई में परफेक्शन है, कोई और अलहई नहीं हो सकता, इसलिए कि किसी की हयात परफेक्ट नहीं है। देखिए हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी के एक वक्त ऐसा था कि हम में से कोई भी नहीं था, फिर हम वजूद में आए तो हमारी जिंदगी शुरू हुई। लेकिन अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं अल हय, तो ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी कभी शुरू हुई, वो अल अव्वल है और वो अल आखिर। हमारी तो जिंदगी वो है ना कि ऐसा भी वक्त आएगा जिसमें हमारी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं है जब वो ना हो, और कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जब वो नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की जो, जब हम अल्लाह ताला की हयात के बारे में बात करते हैं तो वो कंप्लीट है। और इसी तरह जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला की सिफात है, मसलन है अल्लाह ताला की सिफात है कि वो सिफत है अल्लाहु अकबर, जब हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, तो हम इसको ऐसे समझें अगर कि भाई जैसे अल्लाह ताला फलां से बड़ा है, फलां से बड़ा है। जैसे आप, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब मैं कहूँ कि खालिद सबसे बड़ा है, तो आप समझेंगे कि जितने बच्चे बैठे हैं उनमें खालिद एक बच्चा है जो शायद दूसरों से, दूसरे 5-5 फुट के हों, खालिद 6 फुट का हो, तो सबसे बड़ा हो गया। अब आप उनसे रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि उनसे बड़ा है, ठीक है, अब वो 4 इंच भी बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा हो गया। ये चीज मखलूक में तो आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह ताला की बड़ाई की बात करेंगे तो मखलूकात में उस नौयत की बड़ाई है ही नहीं, यानी जब अल्लाह ताला की बड़ाई होगी ना तो वो और है, और मखलूक की बड़ाई है ही और डिफरेंट है। जैसे हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला के अर्श की मिसाल पूरी कायनात के मुकाबले में। अब कायनात कितनी बड़ी है, अरबों खरबों साल की है, सारी कायनात जिसमें सितारे सैयारे सब शामिल, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला के, बल्कि कुर्सी के मुकाबले में पहले देखते हैं, अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे लकोदक सहरा के अंदर, वो लंबा चौड़ा सहरा है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा ले ले, उसमें एक छल्ला पड़ा हुआ है, उस छल्ले को जो निस्बत सहरा के साथ है, इन रिलेशनशिप टू द डेजर्ट है, वो ही निस्बत इस कायनात की अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे। वो अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं ना अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आसमानों से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, हम ऐसे सोचना शुरू हो जाए अल्लाह फलां से बड़ा, नहीं, उसकी बड़ाई का अंदाजा ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ दर्जे में डिफरेंट नहीं है अल्लाह ताला की सिफात, के हम कहेंगे इंसानों की जिंदगी ऐसे अल्लाह ताला की जिंदगी, नहीं, सिर्फ दर्जे में नहीं है, एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि इंसान अगर 1 नंबर पे है मसलन खड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ट्रिलियन नंबर पे है, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला का गुस्सा, इंसान का गुस्सा 1 नंबर पे है तो अल्लाह ताला का ट्रिलियन, ऐसा नहीं है। ये दर्जे का इख्तलाफ होता है। ठीक है, याद रखिए अल्लाह ताला की जो भी सिफत करेंगे ना उसमें दर्जे का नहीं इख्तलाफ सिर्फ है, वो नौयत ही डिफरेंट है, चीज ही डिफरेंट है। अल्लाह ताला की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो हम कहें ना कि अगर के 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत है, तो वो एक पता नहीं समझने के लिए चलो कह देते हैं ऐसे, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हम डिफाइन इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी नेचर ही डिफरेंट है, वो नौयत डिफरेंट है। हर चीज जो अल्लाह ताला के बारे में बयान होगी ना, वो मखलूकात में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि लैसा कमिस्ली ही शय, उस जैसी कोई चीज नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जितना प्यार माँ करती है, माँ एक माँ क्या 70,000 माएं भी जुड़ जाएं, 70 लाख भी हो जाएं, 70 करोड़ भी हो जाएं, उनका प्यार अल्लाह ताला के प्यार के जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी सिफात है वैसी किसी में भी नहीं हो सकती। इसी तरह हयात है कि जस्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, क्या आपको थोड़ा सा तो आपके जहन में आए कि उसकी हयात कैसी होगी, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर देखिए ना, किसी भी मखलूक की और हमारी भी एक वो हयात होती है कि जब हम बच्चे थे, कमजोर थे, फिर जवान हुए, फिर ताकतवर हुए, फिर एक वक्त आ जाएगा, फिर बुढ़ापे में जाएंगे तो फिर कमजोर हो जाएंगे। तो हमारी लाइफ में इस तरह ना इम्परफेक्शन है, कभी कमी आती है, जितनी जिंदगी है भी उसमें भी कोई कमी वाली है, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर जाते हैं, फिर डाउन द हिल है, इस तरह है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। जबकि उसकी हयात परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी कभी खत्म नहीं। तो आज भी अगर हमारी जिंदगी चल रही है, तो वो भी उसी के चलाने से चल रही है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी, इसका मतलब है कि ऐसी नहीं कि इंडिपेंडेंटली खुद एग्जिस्ट कर सकते हो हम, बल्कि वो हमें कायम रखे हुए है। ठीक है, तो वो जिंदा है और वो अलहाई में ये आ गया, और हयात को हम नहीं डिफाइन कर सकते, ये समझ लें आप। अल्लाह ताला की हयात वैसी है जैसी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि हमारी ख़त्म हो जाती है, उसकी नहीं ख़त्म होती, हम एक दिन थे, हम एक दिन नहीं होंगे, फिर इस तरह हमारी ज़िंदगी अप एंड डाउन है, कभी हम मिसाल के तौर पे हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि जिसके अंदर हर वक्त हमें, हर दिन हमें खाने की भी ज़रूरत है, पीने की भी ज़रूरत है, सांस लेने की भी ज़रूरत है, सोने की भी जरूरत है, आराम की जरूरत है, थकावट भी हमें होती है, कई कमियां हमारी जिंदगी की है ना, कभी बीमार होते हैं, कभी डिप्रेस होते हैं, कभी एंशियस होते हैं, कभी सुस्ती आती है, कभी लाचारी आती है, कभी बेबसी होती है हमारी, कभी उसमें गम होता है हमारी जिंदगी में। तो यानी हमारी, देखिए हमारी जिंदगी में इस तरह की चीजें सारी लगी हुई, हम इस जिंदगी में इन सारी चीजों के साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि उसकी हयात में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है कमियां, ये है डिपेंडेंसीज, उसकी हयात में कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखें, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, व तवक्कल अल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कल करो, भरोसा करो उसके ऊपर जो हई है, जो हई है, ला यमूत, तो वो ऐसा है जो कि यानी हमेशा जिंदा है, वो ला यमूत, वो जिसको मौत नहीं है उसी पे भरोसा कर सकते हैं ना। देखें, जिसको ऊंग आ गई हो, नींद आ गई हो, वो भी मौत की बहन है नींद, लेकिन ऊंग आ गई हो, जो थक जाता हो, उसको, उसके ऊपर आप भरोसा कैसे करें, क्योंकि आपने उसके ऊपर भरोसा करके अपना काम उस पे छोड़ दिया और वो तो सो गया, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला की जात इसलिए काबिल भरोसा है, और इसीलिए वो अकेला इला है कि वो ही अल हई है और अल कयूम है, जो कल पैदा हुआ और परसों मर जाएगा, वो कैसे इला हो सकता है। इसीलिए ये अल्लाह ताला के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी और में नहीं आ सकते, जो कोई भी अपने अंदर साबित नहीं कर सकता, ना जिनकी इबादत की जाती है अल्लाह को छोड़ के, उनमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, और कोई अपने माबूदाने बातिल के बारे में ये दावा नहीं कर सकता कि वो कभी भी पैदा नहीं हुए और ना ही कभी मरेंगे, ना या मरे ही नहीं है। बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं, पत्थर हैं, दरख्त हैं, या वो तो खैर वैसे ही जैसे पत्थर हैं, वो तो बेजान ही हैं, लेकिन जो चीज़ें कभी जानदार थी भी, वो भी हमेशा तो नहीं रहती, वो भी फौत हो जाती हैं, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ वो है कि जो जिसकी हयात परफेक्ट है, उसकी हयात किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी हयात में अप्स एंड डाउन नहीं है, उसकी हयात हमेशा है। और अल कय्यूम क्या है? अल कय्यूम, इसके दो माने हैं। पहला माना कायमुम बिनफ्सी ही, यानी वो कायम है, उसकी जात अपने आप में वो खुद कायम है, कोई उसको जरूरत नहीं है किसी की, कि सुबहान अल्लाह के उसकी कोई औलाद हो, या उसका कोई साथी हो, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो उसकी ज़ात को कायम रखे। जैसे हमें कायम रहने के लिए क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, खाने की, पीने की, एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाए तो मर जाएंगे, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो मर जाएंगे। तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें मोहताजी, एहतियाज है, जिस पे हम डिपेंड करते हैं, जब वो सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसको अपनी हयात के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं, वो खुद कायम है, यानी कोई उसको कायम नहीं किए हुए। जैसे हमें तो अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ ना, हमारी ज़रूरियात पूरी करके उसने हमें कायम रखा हुआ है, हमें सस्टेन किया हुआ है, लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि वो दूसरों को भी कायम करता है, यानी कायमुन अला कुल्ली नफ्स, हर एक नफ्स को कायम रखने वाला, यानी जितने भी मखलूकात हैं वो उसके बगैर कायम नहीं रह सकती, अगर वो ना उनको कायम रखे वो नहीं रह सकती, इसलिए उसने रखा हुआ कायम तो ही रह सकते हैं, जब भी तो उसी की इबादत की जाए, क्योंकि वो ना कायम रखे तो तुम तो खुद एग्जिस्ट भी नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युहन्नास, ए लोगो, काफिर, मोमिन, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जितने भी इंसान हैं, अंतुमुल फकराउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको नहीं किसी की जरूरत है, तारीफ वाला, तो तुम तो फकराओ, तुम्हें तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी उसकी जरूरत है। और चीजें तो छोड़ें, जो हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, हम तो सोचते हैं शायद यही हमारी सिर्फ जरूरियात है, नहीं, हमारी जरूरियात इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उनको कभी मांगा नहीं, इसलिए क्योंकि हमें उनका पता ही नहीं है, या हमें बिन मांगे ही मिल चुकी हैं, मसलन है हमारा मैदा काम करता रहे, हमने ये नहीं कभी मांगा, हमारे किडनीज, हमारा लिवर, हमारे दिल काम करता रहे, हमने नहीं कभी मांगा। हमारे अंदर की कितनी चीजें की जरूरत है, आयरन है, कैल्शियम है, हमने नहीं कभी मांगा अल्लाह ताला कैल्शियम दे दे, आयरन दे दे मुझे, ये विटामिन्स दे दे, कभी नहीं मांगे। अल्लाह ताला ने हमारी ये जरूरियात पूरी करी है, बिन मांगे ही करी है। देखने की, सुनने की, सोचने की, बोलने की कुव्वतें हमने मांगी ही नहीं, बिन मांगे ही मिल गई। तो अल्लाह ताला हमारी जात को कायम रखने के लिए जो भी जितनी भी जरूरियात है, हर सांस को हम मांगते नहीं, अल्लाह आप सांस दे दे, अल्लाह आप सांस निकाल ले, अब आप सांस आ जाए, अब चली जाए, हम नहीं कभी मांगते, बिन मांगे मिल रही हैं। तो हम तो बहुत ज्यादा मोहताज हैं, बहुत नीडी हैं, और अल्लाह ताला हमारी हयात को कायम रखे हुए है, हमारी नीड्स को पूरी कर रहा है, फिर भी हमारी जुबान के ऊपर शिकवे रहते हैं कि हमारी तो दुआएं नहीं कबूल हो रही। कितनी सारी चीजें जो अल्लाह ताला तुम्हारी बिन मांगे ही तुम्हें देता जा रहा है। तो जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं ना इस कायनात में, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे जमीन व आसमान है, चाहे जन्नत जहन्नुम है, चाहे जिन्नात हैं, चाहे इंसान है, चाहे शजर, चाहे हजर, चाहे कुछ भी है, हर चीज अल्लाह ताला के चलाने से चल रही है, अल्लाह ताला के उसको जिंदगी देने से और उसको कायम रखने से जिंदा है, वरना वो जिंदा नहीं रह सकती। यानी हम जिंदा नहीं रह सकते अल्लाह ताला अगर हमारी जिंदगी को कायम ना रखे तो ये दो नाम अल हय और अल कयूम, इन दोनों नामों को आप देखें तो इनके अंदर अल्लाह ताला की दूसरी सिफात भी आ जाती हैं। अल्लाह ताला की जात अल हई है, यानी परफेक्ट जिंदा है, इसीलिए तो वो असमी है, अल बसीर है। देखिए अब मिसाल के तौर पे कोई जिंदा हो लेकिन उसका जहन ना काम करता हो, तो उसकी जिंदगी परफेक्शन वाली नहीं है ना। एक इंसान है, वो देख ना सकता, उसकी जिंदगी परफेक्शन वाली नहीं। अल्लाह ताला परफेक्ट है, यानी कि जितनी भी खूबियां वो उसकी जिंदगी में हैं, वो उसकी हयात में है, जिसकी वजह से वो परफेक्शन के लेवल पर है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला के इन नामों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में भी ये दुआ किया करते थे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, इब्नुल कय्यिम ने फरमाया कि कोई बीमारी हो या परेशानी हो, मसले मसाइल हो, तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला को पुकारें और इससे दुआ कबूल होगी। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम भी दुआ ये मांगा करते थे, या हय्यू या कय्यूम बी रहमतिका अस्तगीस, कि ए हय और ए कय्यूम तेरी रहमत की वजह से, तेरी रहमत के साथ, यानी अल्लाह ताला को उसकी रहमत का वास्ता दे रहे हैं कि तेरी रहमत का तुझे वास्ता देता हूँ, कि अल्लाह मैं तुझे तेरी रहमत के वास्ते से तुझसे फरियाद करता हूँ, ए जिंदा और ए कायम रहने वाले और कायम रखने वाले। अस्तगीस में डेस्परेशन है ना, कि इंसान में बहुत मोहताज हूँ, मैं फरियाद करता हूँ, मैं बेग करता हूँ तुझसे, तेरी रहमत के साथ सवाल करता हूँ कि क्या कर दे। या हय्यू या करीम बी रहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, मेरे सारे ही अफेयर्स, जितने मेरे काम हैं उनकी टेक केयर कर ले, उनकी इसलाह कर दे या अल्लाह, यानी मेरे सारे ही कामों को अच्छा कर दे। अब जितने आपके काम हैं आप खुद सोच लें। ये दुआ इसलिए बड़ी प्यारी दुआ है, और मैं खुद भी इसको उस वक्त ज़्यादा मांगती, जिस वक्त के बहुत सारी दुआएं होती हैं और वक्त कम हो, तो फिर सारे ही कामों को या अल्लाह, जो मुझे याद हैं, जो नहीं याद हैं, जो मुझे पता है और जो नहीं पता है, अल्लाह मेरे सारे ही कामों को तू इसलाह कर दे, उनको सही कर दे या अल्लाह ताला, कि यानी चाहे वो औलाद के हैं, चाहे वो रिस्क रोजी के हैं, चाहे वो सेहत के साथ मुतल्लिक हैं, चाहे वो ईमान के साथ हैं, दीन के साथ हैं, आखरत के मामलात हैं, जितने भी मामलात हैं मेरी जिंदगी के, या अल्लाह ताला तो उनको ठीक कर दे। और फिर वला तकिलनी इला नफसी तरफत आईन, अल्लाह ताला मुझे एक आंख के झपकने के बराबर भी मुझे मेरे ऊपर ना छोड़ना, मैं तो लाकर, मैं तो लाचार, मैं तो कमजोर, मुझे मेरे ऊपर ना छोड़ना, अल्लाह तू मेरी खुद ही टेक केयर कर ले। कितनी प्यारी दुआ है। और अगर इंसान इस दुआ को समझ के मांगे तो कितना बड़ा माना है इसमें। आप देखें, मैंने आपको बताया ना, अल हय्यु अल कय्यूम, यानी 96 नाम अल्लाह ताला के इसके अंदर समराइज होके आ जाते हैं। अल हय्यु, 97 और 98 तो ये खुद हो गए, और 99th नाम अल्लाह ताला का अल्लाह सुबहाना व ताला है, तो वो तो अल्लाह ताला का जाती नाम है। तो इसलिए इस नाम को बहुत प्रेशियस समझे, और इस नाम के साथ आप अल्लाह ताला को पुकारिए। ये तो आज की दुआ भी हो गई, और आज मैं आपको जो जिक्र बताने वाली हूँ मुख्तसर सा जिक्र है, मगर माने के समंदर है इसमें। क्योंकि जो असकार मैं आजकल आपको बता रही हूँ, ये वो असकार हैं जिनके जरिए आप, यानी पहले आप इन असकार को करेंगे, फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ और फिर दुआ करेंगे। तो आज का जो जिक्र है, वैसे भी आप मांग सकते हैं, वैसे भी आप ये जिक्र कर सकते हैं, लेकिन दुआ से पहले लाजमी करें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु वा इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। तो बंदा कहता है ना, या अल्लाह तेरी तारीफ है सारी की सारी, सारी तारीफ तेरी, अलहम्द में सारी तारीफ, और लका पहले आ गया ना, सिर्फ तेरे लिए ही है, यानी किसी और के लिए नहीं है सारी तारीफ, सिर्फ तेरे ही लिए, सिर्फ तू ही इस लायक है सारी तारीफ। और फिर कुल्लू हो आ गया तो सारी की सारी आ गई, सारी तारीफ तेरे लिए। क्यों? इसलिए कि परफेक्ट तू है ना, तू इला है, तेरी जात परफेक्ट, तेरे अफाल परफेक्ट, तेरे अहकाम परफेक्ट, तेरे फैसले परफेक्ट, हर तेरी जो बात है वो परफेक्ट है। लेकिन आप बताएं, अगर हम ये समझते हैं कि इस पे एतराज और उस पे एतराज, तो फिर जाहिर ही बात है, फिर तारीफ तो ना रही। वाकई देखें भी कि हम अपने अंदर झांक के, कि हम अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि कुल्लू सारी तारीफ तेरे लिए, अल्लाह तेरे सिवा किसी के लिए सारी तारीफ नहीं हो सकती, सारी हम्द का मुस्तहिक तू है। तो वाकई आपने मुस्तहिक समझा, वह अल्लाह सुबहाना व ताला को अकेले मुस्तहिक समझा, या आप समझते हैं कि नहीं, उसके फैसले तो इतने सही नहीं है, और जो फैसले मैं समझती हूँ वो सही हैं, या जो उसने अहकाम दिए हैं उनके ऊपर तो मुझे एतराज आते हैं, और मुझे लगता है कि ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये सही नहीं है, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और उनके लिए मेरे दिल के अंदर ऐसे हुक्मों के लिए, ऐसी बातों के लिए, अल्लाह ताला के ऐसे एक्शंस के ऊपर मेरे दिल में कोई यानी तंगी है, तो फिर तो सारी तारीफ हम नहीं कह सकते। तो ये वही कह सकता है, और उसी की बात सच होगी जो वाकई ही अल्लाह ताला के हर फैसले और हर बात, हर हुक्म, हर उसके एक्शन और हर उसकी सिफत, उसके ऊपर ये समझता है कि वो ही काबिले तारीफ है। वइलैका यरजुल अमरु कुल्लु, और तेरी तरफ ही लौटती है हर किस्म की बात, हर किस्म का अमर, यानी दुनिया का हर फैसला, सारे उमूर तेरी तरफ से हैं, तेरी तरफ लौटते हैं का मतलब तेरी तरफ से हैं, तू ही करता है, तेरे अलावा किसी का जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है, सब चीजों पे ऑर्डर तेरा चलता है, किसी और का नहीं चलता, और कयामत के दिन भी सारे फैसले तू ही करेगा, हर फैसला तेरी तरफ जाता है, कोई और ना हिसाब ले सकता है, ना कोई और तेरे अलावा फैसले कर सकता है, हर मामला तेरी तरफ ही लौटता है। तो ये बहुत ही ऐसा खूबसूरत जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की बहुत तारीफ है, और मैंने आपको बताया था, जब अल्लाह ताला की तारीफ की जाए तो वो खुश होता है, और वो खुश होके अता फरमाता है। तो ज्यादा अल्लाह ताला की तारीफ करें, और फिर सोच समझ के भी करें, और उम्मीद है आप लोग आजकल कुरान करीम को का दौर कर रहे होंगे। जब कुरान करीम का दौर करें तो सिर्फ ये नहीं कि बस हमने दौरा कुरान करना है और उसको ख़त्म करना है और बस हो गया हमारा दौरा कुरान, वाकई कुरान करीम को अपनी जिंदगी में साथी बनाने के लिए अब से आप सोच लीजिए कि इसको मैंने अब सिर्फ रमजान में नहीं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी का मैंने साथी बना लेना है, और इसके साथ ही मैंने रमजान के बाद भी अपना सफर जारी रखना है। अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं सिर्फ कुरान से, अब और डेप्थ में मैंने जाके इसको समझना है। तो कुरान करीम को जब भी सुन रहे हो तो इतनी मोहब्बत और शौक के साथ सुने कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। याद रखिए, जो भी हम इस वक्त कर रहे हैं, इन दिनों में कर रहे हैं, इनमें अपनी नियतों को ज़रूर खालिस रखिएगा कि ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ताला तू खुश हो जाए, ना किसी को दिखाना है कि मैंने कितने कुरान ख़त्म कर लिए, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना कितनी मैं तरावी कर रही हूँ, ना कितने के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं 8 पढ़ के जा रही हूँ, 4 पढ़ के जा रही हूँ, 20 पढ़ती हूँ, कुछ भी किसी के लिए नहीं, ताकि ये अमल कबूल हो जाए। अमल करना ठीक है, वो भी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना इसको संभालना मुश्किल होता है। इसके संभालने की भी फिक्र करिएगा, ये ना हो कि ये यहीं ज़ाया हो जाए। तो इसको जितना भी आप छुपा के रख सकते हो इसको छुपा के रखिएगा, ताकि सिर्फ अल्लाह ताला को पता हो और आपको पता हो, और ख़ास तौर पे जब सदका करने लगे तो उसको तो बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश किया करें, अनलेस कि आपको ये हो कि मैं करूँगी तो शायद किसी और को ख्याल आ जाए, या मैं शुरुआत करूँ तो कोई और भी मुझे मेरी देखा देखी वो भी कर ले, फिर तो उसका भी अजर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और सदका ये सोच के करिएगा कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ख़त्म करता है, ठंडा करता है। तो अगर मेरी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, मुझसे गुस्से में है, तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए सदका कीजिएगा। और जैसी नियत करेंगे उसी तरह अजर मिलेगा, जिस नियत से जो अमल किया होगा उसी मुताबिक उसकी जजा भी होगी। अगर लोगों के लिए किया होगा तो लोगों को अल्लाह ताला उनके हवाले ही कर देगा क़यामत के दिन के, जाओ फिर जाके उन्हीं से ले लो जिनके लिए तुमने किया था। और अगर आपने ये इसलिए किया कि अल्लाह ताला तेरा गज़ब ठंडा हो जाए मेरे ऊपर ना हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये आपको मिलेगा। और एक एक अमल में मल्टीपल नियत्स भी करें कि नियतें करते जाएं ऐसे कि ये भी मुझे मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए, और इसमें कोई हरज नहीं, ये कोई लालच नहीं, बल्कि ऐसा लालच होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ये भी अता कर देना, ये भी अता कर देना। और जितनी चीज़ों की आप नियत करेंगे अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो सब अता कर सकता है, और उसको परवाह नहीं है, वो बेनियाज है, और वो सब कुछ दे सकता है, जहाँ तक हमारा गुमान भी नहीं जाता हो वो सब कुछ हमें अता कर सकता है, कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है। ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए ज़रूर हो सकता है कि ये चीज़ नामुमकिन हो, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। और हम उससे हमेशा उसकी रहमत का ही सवाल करते हैं, जैसे कि इस दुआ में हमने किया। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।